ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद पंद्रहवां अध्याय और अध्याय का नाम है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। श्लोक संख्या 16 से 18 बोर्ड पे श्लोक संख्या 18 है। संतुष्टा केन वाराजन ना वर्ते तापि वारिणः औपस्थ्य जैव्य कार्पण्या पालायते जना। तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी के संतुष्ट सदैव आत्मतुष्ट रहने वाला व्यक्ति केना क्यों वा अथवा राजन हे राजा ना नहीं वार्तेता सुखपूर्वक रहना चाहिए अपी भी वारिणा जल पीकर औपस्थ्या दुष्चिंद्रियों के कारण जिहव्या तथा जीव के कारण कार्पण्या बुरी दशा होने से ग्रह पालायते घरेलू कुत्ते की तरह बन जाता है जनह ऐसा व्यक्ति। अनुवाद हे राजन आत्मतुष्ट व्यक्ति केवल जल पीकर भी सुखी रह सकता है किंतु जो व्यक्ति इंद्रियों द्वारा चालित है विशेष रूप से जो जीव और जनन इंद्रियों के वश में होता है उसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए घरेलू कुत्ते का पद स्वीकार करना पड़ता है। करेंगे रिपीट करेंगे करिए हे राजन आत्मतुष्ट व्यक्ति केवल जल पीकर भी सुखी रह सकता है किंतु जो व्यक्ति इंद्रियों द्वारा चालित है विशेष रूप से जो जीव और जननेंद्रियों के वश में होता है उसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए घरेलू कुत्ते का पद स्वीकार करना पड़ता है। तात्पर्य शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण या कृष्ण भामरामृत में सुसंस्कृत व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए विशेष रूप से इंद्रियों की तुष्टि के लिए किसी की नौकरी नहीं करेगा। असली ब्राह्मण सदा तुष्ट रहता है। यदि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं रहता तो वह थोड़ा जल पीकर संतुष्ट हो सकता है। यह अभ्यास की बात है। किंतु दुर्भाग्यवश किसी को यह शिक्षा नहीं दी जाती कि आत्म साक्षात्कार में किस तरह तुष्ट रहा जाए। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि भक्त इसलिए सदा संतुष्ट रहता है क्योंकि उसे अपने हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति का आभास होता रहता है और वह उन्हीं के विषय में 24 घंटे चिंतन करता है। यही असली तुष्टि है। भक्त कभी भी जीव तथा जन्मेंद्रियों के आदेशों पर नहीं चलता, अतः वह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित नहीं होता। ओम अज्ञानस्य निरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलम् श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का आज के दिन हार्दिक स्वागत है इस भगवत कक्षा में। और अभी आपने जो श्लोक सुना उसका परपट और उसका अनुवाद ये अपने आप में बहुत बड़ा बॉम्ब लगा होगा। संतुष्ट के नवा राजन वर्तिता बीमारिणा अपस्थ्य जैव कार्पण्य ग्रह पाल्या दे जना। हे राजन आत्मतुष्ट व्यक्ति जो संतुष्ट है के नवा राजन क्यों हे राजन वर्तते तापी वारिणा जो आत्मसंतुष्ट ब्राह्मण है वो कैसे भी रह सकता है किसी भी स्थिति में। वारिणा अगर उसे खाने को भी ना मिले कि वो जल पी कभी संतुष्ट रह सकते हैं। और इसी तरह दूसरा एक कोई ब्राह्मण के लक्षण होंगे कारपण्य जो कृपण व्यक्ति है जो अपने जीवा और विषेन्द्रियों की इंद्रियों से प्रेरित है उसकी स्थिति कैसे है घर में पाले हुए कुत्ते के समान। ये जो श्लोकों की श्रृंखला चल रही है इससे पहले 16 और 17 श्लोक हम पढ़ेंगे उनका तात्पर्य नहीं है। 16 श्लोक का अनुवाद सुनिए। जो आत्मतुष्ट है और अपने कर्मों को प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जोड़ता है वह अपनी जीविका के लिए चेष्टा किए बिना दिव्य सुख भोगता है। भला उस भौतिकतावादी के लिए ऐसा सुख कहां जो विषय तथा लोभ से प्रेरित रहता है और जो धन जोड़ने की इच्छा से भी सभी दिशाओं में भटकता रहता है। फिर 17वां श्लोक। जिसके पांवों में सही जूते हों उसे कंकड़ पत्थरों तथा कांटों पर चलने में कोई भय नहीं लगता। उसके लिए सभी कुछ कल्याण में शुभ है। इस प्रकार जो सदैव आत्मतुष्ट रहता है उसे दुख नहीं सताते वह सर्वत्र सुख का अनुभव करता है। है ना। इससे पहले 15 श्लोक सुने। निर्धन होकर भी मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह के लिए या विख्यात धर्मज्ञ बनने के लिए, अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहकर तथा अपनी जीविका के लिए कोई प्रयास चेष्टा नहीं करते हुए भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार निष्काम व्यक्ति बिना किसी चेष्टा के अपनी जीविका कमा लेता है। कमाल के श्लोक है, खासकर इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐसे एक श्लोक सुनने को मिल रहे हैं। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट रहिए और केवल पानी पी के रहिए संतुष्ट। बस कोई काम धंधा फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, बस केवल संतुष्ट रहने का प्रयास कर लें, बस सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्त कभी भी जीव और जन्मजीव के आदेशों पर नहीं चलता, अतः वे कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित नहीं होता। तो आज श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम असली स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की हर परिस्थिति में कैसे संतुष्ट रह सकते हैं। ये जो अध्याय है ये सातवें स्कंध का अंतिम अध्याय है, सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। आप में से कितने भक्त लोगों ने थर्सडे को लेक्चर सुना था गिरिमा प्रसाद प्रमुखर, तो फिर आप इस श्रृंखला को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। मीना साहब जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये सुसंस्कृत व्यक्तियों के मनुष्यों के लिए उपदेश है। और ये पूरे सातवें स्कंध जैसे 15 अध्याय है, तो पहले 5 अध्याय तो बोले जाते हैं उन समर्पित भक्तों के लिए जो भगवान पे पूर्ण रूप से समर्पित है, प्रहलाद महाराज। और बीच के 5 अध्याय हैं हिरण्यकश्यपों के लिए जो बिल्कुल भगवान से विमुख हैं। और अंतिम 5 अध्याय हैं मिक्स लोगों के लिए जो थोड़ा सा प्रहलाद और थोड़ा सा हिरण्यकश्यप बनना चाहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप है स्त्री और धन के पीछे भाग रहा है और प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से समर्पित है। जो हम लोग साधक भक्तों की स्थिति है वो कुछ मिक्स कैटेगरी में है। हम चैतन्य महाप्रभु तो कह गए ना धनम ना जनम सुंदर है, हम कह रहे हैं हाँ धनम हाँ जनम हाँ सुंदर है, और ये भी मिले और साथ साथ में भक्ति भी मिले तो कैसे होगा। तो उसी में जो अंतिम जो अध्याय थे 11, 12, 13, 14 और 15 उसमें एक आदर्श समाज की एक आदर्श पारिवारिक जीवन की चर्चा की गई और अंत में वो परिकाष्ठा पहुंचती है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। यानी कि इस बहुत ही संसार में रहते हुए मनुष्य की जो टॉप मोस्ट जो परिकाष्ठा है चेतना से, कि उसकी चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि वो अब बिना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहे अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। इस पूरे तात्पर्य को अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो कहां जाके प्रभुपाद के तात्पर्य की किस पंक्ति से हमें राहत मिलती है, अगर किसी ने ध्यानपूर्वक सुना है। हाँ, वेरी नाइस, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। बस पूरे तात्पर्य को प्रभुपाद ने बैलेंस कर दिया पूरी परिस्थिति को। ये तो केवल अभ्यास की बात है, घबराइए मत। ये क्या बता रहे हैं भागवतम, खाली पानी पी के संतुष्ट रहना पड़ेगा, ये पहले क्यों नहीं बताया जब हम कृष्णा कॉन्शियस में आए थे तब तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाया, अब बोले बस पानी पी के संतुष्ट रहना है। नहीं, प्रभुपाद कह रहे जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और ये प्रभुपाद की एक्सप्रेस ही है, प्रभुपाद अपने एक्सपीरियंस से लिख रहे, अपनी रियलाइजेशन से, जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। प्रभुपाद अपने जीवन में किया, पूर्ववर्ती जीवन आचार्यों के जीवन में देखा और अपने शिष्यों के जीवन में देखा, तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 1972 में जब प्रभुपाद एक बार पेरिस में गए तो उनके साथ गुरु गोरांग प्रभु थे प्रभुपाद जी के शिष्य, और वहीं पर ही प्रेस इंटरव्यू शुरू हो गया। तो एक व्यक्ति ने जो रिपोर्टर था प्रभुपाद से प्रश्न पूछने शुरू किए और धीरे धीरे वो प्रभुपाद जी की पर्सनल लाइफ में आ गया कि आप कैसे थे पहले कैसे थे। तो प्रभुपाद जी प्रश्नों के साथ साथ रहते रहते उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताने लगे कि मैं से बिजनेस करता था, पत्नी थी और मैं फिर छोड़ के मैंने संन्यास लिया। वो थोड़ा और पर्सनल हो गया, आपके कितने बच्चे थे। प्रभुपाद ने उसकी आंखों में घूर से देखा, उन्होंने बोला हजारों। हजारों से बोला बहुत बढ़िया, स्कैंडल मिल गया तो स्वामी जी के 1000 बच्चे, वो कुछ लिखने लगा। प्रभुपाद ने उसको और हैरान किया, और इस सारे के सारे बच्चे बिना पत्नी के, बिना पत्नी के 1000 बच्चे। और फिर प्रभुपाद ने बोला उसमें से कुछ बच्चे यहां भी बैठे हैं। तो फिर उसकी मालूम चला कि प्रभुपाद किन बच्चों की बात कर रहे हैं, अपने शिष्यों के। तो हम प्रभुपाद जी के बच्चों के बच्चे हैं, और प्रभुपाद लिख रहे हैं इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस।
केवल प्रैक्टिस करके सही ढंग से अगर हम अभ्यास करेंगे तो आज भागवतम के श्लोकों में जो बताया जा रहा है एक सच्चे ब्राह्मण की जो स्थिति है, प्रभुपाद कहते हैं असली ब्राह्मण या असली भक्त हमेशा संतुष्ट रहता है, तो हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब जलदूत में गए, अभी दो दिन पहले हमने वो उत्सव मनाया, तो जलदूत में प्रभुपाद को कितनी तकलीफें हुई, उनको सी सिकनेस हो रहा था, उनके हार्ट हृदय के दौरे भी पड़े दो, और उसके बाद प्रभुपाद अपनी जलदूत डायरी में 9 सितंबर को लिखते हैं, बट आई एम स्ट्रगलिंग एंड द नेक्टेरियम ऑफ लाइफ इज श्री चैतन्य चरतामृत द सोर्स ऑफ ऑल माई वाइटैलिटी। हालांकि इनमें इतनी विषम परिस्थितियों में हूं, लेकिन जो मुझे अमृत प्राप्त हो रहा है वो चैतन्य चरतामृत से प्राप्त हो रहा है और यही मेरी शक्ति का सारा कारण है। फिर 10 सितंबर को प्रभुपाद लिखते हैं, आई फील टूडे बेटर बट आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम श्री वृंदावन एंड माई लॉर्ड श्री गोविंद गोपीनाथ राधा दामोदर द ओनली सोलेस इज श्री चैतन्य चरतामृत इन विच आई एम टेस्टिंग द नेक्टेरिन ऑफ लॉर्ड चैतन्य लीला। मैं वृंदावन से बहुत गृह अनुभव कर रहा हूं गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी से, लेकिन मेरे को एक जो अमृत प्राप्त हो रहा है वो कहां से प्राप्त हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से। तो यहां जो श्लोक में लिखा है कि केवल जल पी के भक्त लोग संतुष्ट रहते हैं, हम प्रभुपाद जी के जीवन में देख रहे हैं कि पूरे समुद्र के बीच में जल के बीच में थे, उनकी बुरी स्थिति थी, लेकिन केवल चैतन्य चरता में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को आस्वादन करके ही उनको जीवन उनको शक्ति प्राप्त हो रही थी। श्रील प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में थे और अपने गुरु के आदेशों को पूरा करने के लिए पुस्तकों का लिखने के लिए प्रभुपाद मधुकरी करते थे और मधुकर जी उनको धन प्राप्त होता था, उससे वो अनाज वगैरह नहीं खरीदते थे, उसे क्या खरीदते थे, पेपर खरीदते थे, कागज खरीदते थे और उस कागज पे वो लिख के और फिर वृंदावन से थर्ड क्लास डब्बे में बैठ के दिल्ली आते थे और दिल्ली स्टेशन में उतर के कोई रिक्शा नहीं करते थे चावड़ी बाजार आने के लिए, अपने सर पे लाद के आते थे और जो थोड़ा बहुत भी पैसा होता था उससे वो कोई ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, कुछ प्रसाद नहीं देते थे, वो पैसा बचाने का प्रयास करते थे और फिर मुद्रक प्रिंटर के पास जाते थे और फिर सब कुछ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को ये सब करते हुए भी किस चीज में आनंद आ रहा है, क्योंकि वो अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो भक्त लोग ये ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कैसे आनंद में रह सकते हैं, तो इसके विषय में भागवतम के चौथे स्कंध के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक में मैत्रेय मुनि विदुर को बोलते हैं, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों में भौरों के सदृश आसक्त रहते हैं, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में रखते हैं कि भक्त को किसी भी भौतिक विषयों में कोई रुचि नहीं है, जब तक वह भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है वो जीवन की किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है। भगवान के चरणों की तुलना कमल से की जाती है जिसमें केशर की धूली रहती है, भक्त सदैव भगवान के चरण कमलों मधुपान में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान के चरण कमलों के समान है जिसमें केशर की धूल रहती है, सेफ्रन डस्ट पार्टिकल्स, और उसमें से शहद हनी निकलता है और उस हनी का आस्वादन भक्त लोग करते हैं, तो बस फिर उनको इस संसार के वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। तो आप हम सोचेंगे कि ये भक्त लोगों कहां से इनको आनंद मिल रहा है, भगवान के चरण कमलों से जो शहद निकल रहा है उसका वो पान कर रहे हैं, इसलिए वो संतुष्ट है, पूर्ण रूप से संतुष्ट। रघुनाथ गोस्वामी जी जब चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए, कितने दिन लगे थे उनको जगन्नाथपुरी पहुंचने में बंगाल से, 12 दिन, और 12 दिनों में कितने दिनों ने कोई भोजन प्राप्त किया, 3 दिन भागते क्योंकि महाप्रभु के चरणों की शरण लेनी है, और वहां जाकर भी वो बाद में कितना प्रसाद लेते थे, जो प्रसाद पूरा रिजेक्ट हो जाता था गाय में नहीं खाते थे, केवल थोड़ा उसी को पा लेते थे। फिर राधा कुंड में भी आए तो क्या लेते थे, 2 दिन में 150 ग्राम छाछ। तो फिर पूछ सकता है कैसे जीवन निर्वाह हो रहा है, सोच में नहीं सकते हम तो कैसे जीवन निर्वाह हो रहा है। एक दिन 150 ग्राम छाछ पी रहे हैं और मालूम चला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का पेट खराब हो गया, उनको दस्त लग गए, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गई, ये कैसे हो गया भाई, 150 ग्राम छाछ पीने में व्यक्ति का पेट खराब हो गया, इससे कम और क्या पिएंगे। वैद्य जी को बुलाया गया, उन्होंने नब्ज पकड़ी, बोले ये तो ओवर ईटिंग ही है, 150 ग्राम छाछ भी दो दिन ओवर ईटिंग है, ये कैसे हो गया संभव। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी पूछा क्या कोई ऐसे तो सोच नहीं सकता कि हमारी तरह वो छिप छिप के कुछ खाते हो गए, कई बार होते नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, बेरार बाद में आराम से फ्रिज खोला फर्स्ट क्लास फ्रिज, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ओवर ईटिंग कैसे हो गई। तो मालूम चला ये रहस्य का खुलासा किया गया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किए हुए हैं, वहां राधा मंजरी ने राधा कृष्ण के लिए खीर बनाई, उसको खीर को ऑफर किया, वो तो रति मंजरी खूब खीर खा ली उससे और उससे उनका पेट खराब हो गया। बोलो क्या लेवल है उनका, कहां पे वो आस्वादन कर रहे हैं, और आम व्यक्ति यही पे भौतिक जगत में ही उल्टे सीधे विषयों में घूम रहा है। तो भक्त लोगों को ये अमृत प्राप्त होता है, ये नेक्टर प्राप्त होता है, इसलिए वो इस संसार की वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहते। तो जो भक्त जो ब्राह्मण इस रूप से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जो भक्त लोग ऐसे पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भागवतम के दशम स्कंध में कहते हैं कि मैं ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में आदर पूर्वक बार बार प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो ऐसे संत पुरुष हैं वो बिल्कुल मान रहित हैं और शांत हैं और वो ही सभी जीवों के परम हितेशी हैं, सच्चे हितेशी हैं। तो एक संतुष्ट ब्राह्मण ही दूसरों के हित के बारे में सोच सकता है, जो अपनी स्थिति के बारे में चिंता रहे वो दूसरों के विषय में कैसे सोचेगा। और दूसरा तरीका यह है, अगर हम अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो दूसरों के हित के बारे में सोचकर हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम केवल अपने ही हित के बारे में सोचते रहेंगे तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। तो ये है एक आत्मसंतुष्ट ब्राह्मण की स्थिति। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के पहले वाक्य में लिखे हैं कि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण या कृष्ण भावनामृत में सुसंस्कृत व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए विशेष रूप से अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए किसी की नौकरी नहीं करेगा। अब देखो आज के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे समझ सकते हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं सब नौकरी करना बंद कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वन हू रिसीव्स अ पेचेक इज अ शूद्र, जिसको पेमेंट मिलती है यू नो सैलरी मिलती है चाहे कितना ही अच्छा पैकेज क्यों ना हो वो क्या है, शूद्र है। तो जैसे कि रूप और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले रामकेली में तो कह रहे हैं हम तो जगाई और मधाई से भी ज्यादा पतित हैं। तो क्या कैसे वो जगाई और मधाई से पतित हैं, बोले जगाई और मधाई का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, दूसरा ये धाम में रहे नवदीप धाम में, और तीसरा इन्होंने किसी की नौकरी नहीं कही विशेष किसी मलेच की, और हम लोगों ने तो नीच जाति के मलेच राजा और नवाब हुसैन की नौकरी की, इसलिए हमारी स्थिति तो इनसे भी खराब है। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी की नौकरी स्वीकार करना एक कुकुर की मानसिकता है। जैसे कुकुर कुत्ता एक संतुष्ट रहता है हमेशा अपने स्वामी की शरण में रह के, तो नौकरी करने का अर्थ है किसी को हमारा कोई कोई स्वामी होना चाहिए। तो ब्राह्मण जो है ऐसा कार्य नहीं करेगा, जो सुसंस्कृत भक्त है कृष्ण भावनामृत में वो ऐसा नौकरी नहीं करेगा, वो अपने आप में संतुष्ट रहेगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसको प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है, हम कर नहीं सकते। तो अब चर्चा करेंगे कि कैसे इस श्लोक को हम अपने जीवन में डाल सकते हैं। जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये केवल अभ्यास की बात है, जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो क्या प्रैक्टिस करनी है हमने जिससे हम इस स्तर को प्राप्त कर सके। तो भागवत के चौथे स्कंद के आठवें अध्याय में नारद मुनि जी जब ध्रुव महाराज से मिलते हैं, 29वां श्लोक है, तो नारद मुनि जी कहते हैं कि भगवान की गति बड़ी विचित्र है, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। नारद मुनि कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा संतुष्ट रहेगा. एन इंटेलिजेंट पर्सन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं. और साथ में लिखते हैं कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यम हिना व्यथंती इति पुरुषम पुरुष शबा सम दुख सुख धीरा स अमृतवाय कल्पते. जो पुरुष सुख और दुख में धीर है और विचलित नहीं होता वही अमृतत्व को प्राप्त करता है. यानी ये हर परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना है. और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वन हु कैन टॉलरेट इज अ ब्राह्मण एंड वन हु लैमेंट इज अ शूद्र. जो कि सहन कर ले यानी कि जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे वो है ब्राह्मण, और जीवन की दुखमय परिस्थितियों में वो शोक करे, किसी को आलोचना करे, किसी पे आरोप लगाए और अपने आप में तरस खाए, मेरी क्या स्थिति हो गई, कितना बुरी हालत है मेरी, ये किसके लक्षण है? शूद्रों के लक्षण है. यानी हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना. हमें से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? कहना आसान है, पढ़ना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं हम सारी फिलॉसफी भूल जाते हैं, है ना, और हम बिल्कुल उसी रजोगुण और तमोगुण के चंगुल में फंस जाते हैं. लेकिन ये प्रैक्टिस, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं प्रैक्टिस. साधना भक्ति का केवल ये नहीं है कि केवल रिचुअल्स करते रहे, मैं सुबह उठे मंगल आरती खड़े जब किया, ये किया, ये किया, नहीं हो गया साधना पूरी हो गई. साधना भक्ति का अर्थ है कि ऐसी साधना करना जिससे हमारे अंदर एक गुण भी विकसित हो, इसकी भी प्रैक्टिस करना, ये भी एक ये अभ्यास की बात है. और श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण या असली भक्त हर परिस्थिति में संतुष्ट कैसे रहता है. क्या प्रभुपाद ने बताया कि संतुष्टता का कारण क्या है? हाँ, हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है, हर कार्य को भगवान से संबंधित देखता है, इसका अभ्यास. और भगवद गीता में कहां भगवान कहते हैं कि ऐसा अभ्यास करना चाहिए हमें? कहां भगवान ये श्लोक बोलते हैं कि ऐसा अभ्यास करना चाहिए? हाँ, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा ना अन्य गामिना. अभ्यास योग युक्तेना, अपने को ये चेतना हमारी युक्त रहे इसका अभ्यास करना है. चेतना ना अन्य गामना, अपनी चेतना को कहीं और ना जाने दो, वापस खींच के लाओ. प्रतिदिन हम जप करते हैं, ये संघर्ष हमें करना चाहिए. चेतना जाएगी, मन भटकेगा, उसको पकड़ के लाना, फिर भटकेगा, उसको पकड़ के लाना, ये अभ्यास. और केवल चैंटिंग के समय ही नहीं, 24 घंटे ये प्रयास, चेतना ना अन्य गामिना, अभ्यास योग युक्तेना. हमारे 2 घंटे के जप में मन तभी लगेगा जप में जब पूरे दिन के 22 घंटे में हमने ये प्रयास किया. 22 घंटे के लिए मन को खुला छोड़ दे, चल मन अब तू स्वतंत्र है, सेलिब्रेट, जा जो करना है कर, कल सुबह मिलेंगे, बाय बाय. ये अक्सर होता है, 22 घंटे जो मर्जी करना है करो, अगले दिन बैठेंगे, चलो मन को लगाना है. कितना मुश्किल होगा, मन तो अब बहुत बलवान हो गया, जिद्दी हो गया, अब कैसे मानूंगा. तो पूरा दिन ये सचेत रहने का प्रयास करना है, ये प्रैक्टिस, इसका अभ्यास करना है. 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यत् करोति अश्नाति यज्जुषोषी ददाति यत् करोषि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम्. जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, मुझको अर्पण करो. तो बल्लभ विद्याभूषण जी इसकी टीका में बताते हैं कि ये जो श्लोक है ये परिनिश्चित भक्त के लिए है. परिनिश्चित भक्त क्या होते हैं? जो गृहस्थ आश्रम में भक्त रह रहे हैं उनकी मुख्यतः 2 श्रेणी है, एक है सनिष्ठ भक्त, एक है परिनिष्ठित भक्त. जो सनिष्ठ भक्त होता है वो अपने नियत कार्य करता है और नियत कार्य के फल को भगवान को समर्पित करता है. लेकिन जो परिनिष्ठित भक्त है वो धीरे धीरे अभ्यास करके ऐसी परिस्थिति में आ गया कि वो कर्म करने से पहले ही कर्म को भगवान को समर्पित करता है, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करता है. और उसके जो मुख्य कार्य होते हैं वो श्रवण कीर्तन इत्यादि होते हैं, और जीवन के निर्वाह के लिए वो अपनी इच्छा से कर्म नहीं करता, समाज में एक आदर्श उदाहरण उपस्थित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए वो कर्म करता है. अब समझे, यह है परिनिश्चित भक्त. सारे कर्म केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब श्रवण कीर्तन उसी में उसके लिए प्रमुख प्राथमिक कार्य रहते हैं, और जो गोल कार्य सेकेंडरी कार्य हैं
जो भौतिकता वाले जो कार्य दिखने में लगते हैं, लेकिन वो भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की संतुष्ट एक समाज में उदाहरण देने के लिए। और जो सनिष्ठ भक्त है वो कर्मों के केवल फल को अर्पित करता है, उसके लिए जो मुख्य कार्य है उसका बिजनेस है, और सेकेंडरी कार्य है चैंटिंग 16 माला का जप करना। तो सनिष्ठ भक्त जब जप करेगा तो उसके जप में क्या घूमेगा, उसका प्रमुख कार्य क्या, बिजनेस, आज क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं, क्या क्या मीटिंग्स हैं, इसके बारे में चिंता करता रहेगा, और जब खत्म होते ही रखेगा और भागेगा चलो। लेकिन जो परिनिष्ठ भक्त है वो तो हमेशा ही चैंटिंग कर रहा है, सारे कार्य केवल भगवान को ही समर्पित हैं। तो इस ढंग से अभ्यास करते हुए सनिष्ठ से परिनिष्ठ कैसे हो सकते हैं कि धीरे धीरे जब हम श्रवण कीर्तन करें तो जो हमने सुना, जो हमने अध्ययन किया, जब अपने कार्यक्षेत्र में जाते हैं तो उस फिलॉसफी को, उस सिद्धांत को अपने कार्यक्षेत्र में देखने का प्रयास करना, उसको लागू करने का प्रयास करना, तो फिर क्या है, ये गैप कम होता जाएगा। और जो ब्रह्मचारी भक्त हैं, सन्यासी हैं, उनको निरपेक्ष बोला जाता है, उनके तो सारे कार्य ही केवल भक्ति में, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या है कि जो हम सेवा के क्षेत्र में जाएं, उनको तो बाहर कहीं फैक्ट्री में, ऑफिस में नहीं जाना, ये मंदिर में ही सेवाएं करनी है। तो जब सेवा के क्षेत्र में जाएं तो जो श्रवण किया है, जो अध्ययन किया है, उन सिद्धांतों को अपने सेवा के क्षेत्र में लगाना, अन्यथा वो क्या बन जाएगा, सेवा का क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाता है। क्योंकि जो हमने सुना, जो हमने अध्ययन किया, उसको हमने प्रैक्टिकल लगाने का प्रयास नहीं किया। केवल थ्योरी मात्र से ही हम भगवतधाम नहीं चले जाएंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही हम भगवतधाम जाएंगे। तो ये अभ्यास, इसको अभ्यास करना है, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारी चेतना इसमें शुद्ध होती चली जाएगी। जैसे देखते हैं कि एक बार एक विदेशी महिला भारत में आई और भारत के शहर में गई, उसने देखा यहां कोई सिस्टम ही नहीं है, मकान बने हुए हैं, कोई एक स्टोरी का है, कोई मल्टी स्टोरी का है, कोई कैसे बना हुआ है, कोई कैसे बना हुआ है, सड़कें उल्टी सीधी हैं। तो बोले यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और विदेशों में बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्स्ट क्लास सड़कें हैं, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर विदेश का अच्छा है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। फिर उन घरों के अंदर गए और घर के अंदर जाकर देखा, भारत के घर में बहुत सुखी परिवार, पति पत्नी बच्चे सब मिलकर भगवान की सेवा कर रहे हैं और आपस में बहुत प्रेम है। और फिर वो पाश्चात्य देशों के घरों में गई जो बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स थी, बोले है ही नहीं यहां पे, पति पत्नी दोनों नौकरी करने गए हैं और बीच में सोफे में बैठा है कुत्ता एसी ऑन करके। बोले क्या है, टीवी चला के चले जाते हैं, एसी ऑन करके चले जाते हैं, कुत्ता आराम से ऐश कर रहा है और पति पत्नी आगे आपस में दूसरे से बात नहीं, उसका वहां फिर, उसका वहां फिर। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, कौन ज्यादा संतुष्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। तो हमने क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना निर्भर ना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे निर्भर रहे कि मेरा अंदर का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, फैसिलिटीज मिल गई, पोजीशन मिल गई, पोस्ट मिल गया, पावर मिल गई, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या सिस्टम है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब है तो क्या होगा, संतुष्टि कभी आ ही नहीं सकते। और ऐसा व्यक्ति खुद भी हमेशा परेशान रहेगा और दूसरों के लिए भी परेशानियां करता है। एक बार तुमने गोपाल स्वामी महाराज बता रहे थे कि जीबीसी का जो चेयरमैन चुना गया किसी भक्त को, जो बहुत वरिष्ठ भक्त उपाधि के शिष्य, तो बोला उन्होंने उन भक्त को इसके लिए चुना क्योंकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी चेयरमैन बनने के। तो आध्यात्मिक जीवन में किसी को पावर पोस्ट डेजिग्नेशन मिलती है उसके लिए उसकी योग्यता है कि उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है उस पदवी को प्राप्त करना। वैष्णव उसको प्रेरित करते हैं कि इच्छा के लिए, सेवा के लिए करो, और सेवा के रूप में उसको स्वीकार करता है। और हम भौतिक कंसेप्ट में क्या देखते हैं धारणा में कि हर कोई नेता के पोस्ट पे आना चाहेगा, लीडरशिप के रोल में आना चाहेगा, क्यों, वो उसको एक प्रिविलेज मानता है, एक अपॉर्चुनिटी है ना, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं, एक प्रिविलेज नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसको जिम्मेवारी को लेकर। तो अगर कोई भक्त, जैसे हम देखते हैं भगवान राम को बनवास भेज दिया कैकेयी ने और भरत के लिए राज्य मांगा, तो कैकेयी समझ रहे थे कि राजा की जो पदवी है ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है, मेरा बेटा अब राजा बनेगा और मैं बनूंगी राजमाता। लेकिन जब भरत जी आए, भरत जी बोला ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मैं इसके योग्य नहीं हूं, राम उनके योग्य हैं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उन्होंने सेवा तो की लेकिन बिना वो पदवी स्वीकार किए। तो ये भरत जी रहते थे नंदी ग्राम में, उनका मालूम था कि राम जमीन पे सोते हैं, तो वो खुदा उन्होंने एक गड्ढा खोदा और राम के सर के नीचे सोए और छाल के वृक्ष छाल के कपड़े डाले, जटाएं रखी, लेकिन वहां से उन्हें राज्य का संचालन किया। तो इसलिए जो संतुष्टि मिलती है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बाहरी चीजों से नहीं, संतुष्टि मिलती है सर्विस एटीट्यूड से, सेवा की भावना से। अब सेवा की भावना एक दिन तो विकसित नहीं हो जाएगी। हम बल जी इस कौन सोसाइटी में आए हैं, प्रभुपाद जी के आंदोलन में भौतिक धारणाओं को लेकर, भोग की प्रवृत्ति को लेकर, तो प्रारंभिक अवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। बाहर की परिस्थितियां निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। एक भक्त को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करना जिससे कि अपनी उस सेवा की भावना को विकसित कर सके। लेकिन भक्त को अपनी तरफ से देखना चाहिए कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा निर्भर करूं अपनी आंतरिक स्थिति में, जाके हम बाहरी स्थिति में। और जो उनके वरिष्ठ भक्त उनको देखना चाहिए कि कैसे जो नए भक्त आए हैं इनको हम बाहरी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करें जिससे अपनी सेवा की भावना को ये विकसित कर सके। तो इस दल के ये आपस में सहयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में ये प्रैक्टिस करना और आसान हो गया। महाप्रभु गए कुर्मा ब्राह्मण को, उन्होंने बोला जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होए तार ए देश। कि अगर हम इस प्रचार के आंदोलन में जुड़ते हैं तो इस भौतिक जगत की कोई भी कलमश हमें छू नहीं पाएगी, इतना गारंटी दे रहे हैं प्रभुपाद। कि कोई जारे देखो तारे कहो इस संदेश का पालन करता है, जहां भी उसको अवसर मिले वो प्रचार कर रहा है, तो भौतिक जगत के किसी भी कलमश से वो हमेशा दूर रहेगा और भगवान हमेशा उसके साथ में रहेंगे। इस तरह वो हमेशा भगवान का निरंतर स्मरण कर सकता है। ये कलयुग में भगवान के स्मरण करने की सबसे सरल विधि है। एक बार हिजगेस वंशीवर्धन प्रभु ने हमें एक कथा प्रसंग सुनाया था हमारे भक्ति शास्त्री के दौरान, जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी के गृहस्था कपल थे, शिष्य थे, वो अहमदाबाद में सेवा कर रहे थे। तभी प्रभुपाद जी का आदेश आया कि अहमदाबाद के पास एक फार्म हाउस का जमीन मिला है, वहां जाके सेवा करो। तो दोनों पति पत्नी चले गए उस फार्म हाउस में, और वो बहुत बड़ा फार्म था और उसमें कोई बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, केवल एक छोटी सी बीच में दीवार खड़ी हुई थी बस, और कुछ नहीं। तो ये विदेशी जो कपल था ये वहां जाता था, इनके पास गोपाल जी का विग्रह था, तो उन्होंने गोपाल जी का विग्रह वहां रखा और हर शाम को वो आरती करते थे। और आसपास के गांव वालों को मालूम चला कि कोई विदेशी लोग आए हैं, गोपाल जी की आरती करते हैं, उन्होंने इस आरती में आना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा लगा। और दिन में वो क्या करते थे ये विदेशी कपल, उनके 3 साल के साथ छोटी बेटी भी थी, वो बाहर में शहर में जाते थे, कीर्तन करते थे और मधुकरी कर लेते थे, दाल चावल आटा जरा कुछ मिला, वापिस आए अपने फॉर्म में, कुछ भोग मनाया, भगवान को गोपाल जी को अर्पण किया, प्रसाद पाया। इस तरह से सादा उनका जीवन चल रहा था, विदेश के रहने वाले भक्त। फिर क्या हुआ, एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई, बहुत जबरदस्त बारिश, और सारा आसपास कीचड़ हो गया और अब उनके पास कोई शेल्टर नहीं है ऊपर। जोरदार बारिश हो रही है, पत्नी जो छोटे बच्चे और पति पूरा गीले हो गए, भीग गए बारिश में, और पत्नी बोली कुछ तो करो, दीवार के साथ चिपके खड़े हो गए। मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब एक ही उपाय रह गया, भगवान को पुकारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस ढंग से वो जोर जोर से हृदय से भगवान को पुकारने लगे, और बारिश होती रही, वो भगवान को पुकारते रहे। कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद बारिश खत्म हुई तो आसपास सब कीचड़ ही कीचड़, अब तो कोई गांव वाला भी वहां पे नहीं आ रहा उनकी आरती में। आप बताइए कितनी मुश्किल परिस्थितियां होंगी उनके लिए। अगले दिन बेचारे किसी से कीचड़ से बाहर निकले और फिर गए कुछ मधुकरी की, और फिर वापिस आके गए आने लगे, और फिर गोपाल जी की सेवा कर रहे किसी इतनी मुश्किल परिस्थितियों में। तभी क्या देखते हैं कि एक दिन एक व्यक्ति कोट पैंट टाई डाल के ट्रैक्टर चला के आ रहे हैं वहां पे। तो बड़ा अजीब सा व्यक्ति है, ट्रैक्टर से उतरा, कोट पैंट टाई डाला हुआ, और उसे कुछ बातचीत नहीं की, उन्हें से विदेशी देखा उनको पति पत्नी को और आसपास की परिस्थिति को देखा और फिर ट्रैक्टर में बैठ के वापस चला गया। और दो दिन के बाद वहां पर एक ट्रक आता है सारे बिल्डिंग मटेरियल के साथ, सारे कुछ सारी सुविधाओं के साथ, और धड़ाधड़ वहां पे वो कमरे बना देते हैं, एक बिल्डिंग बना देते हैं ताकि वहां पे ये पति पत्नी रह सके। देखिए क्या मतलब है, उस परिस्थिति में भी बहुत लोग संतुष्ट हैं। और फिर जब ऐसा समर्पण होता है तो प्रभुपाद जी शायद 1857 में लिख रहे हैं कि कृष्णा लुक्स आफ्टर द कंफर्ट्स ऑफ हिज डिवोटी। आम जीवों को तो भगवान पालन करते हैं लेकिन अपने भक्तों के कंफर्ट को क्या बोलेंगे, आराम को प्रदान करते हैं। कंफर्ट खाली पालन पोषण नहीं करना, भक्तों को तो पूरा आराम देते हैं भगवान। तो उस परिस्थिति में भी वो पति पत्नी पूर्ण रूप से संतुष्ट। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सत्युग की बातें कर रहे हैं, ये कुछ वर्षों के मुश्किल से 50 वर्ष में नहीं होंगे इस बात को। ऐसी परिस्थितियों में भी भक्त लोग सेवा करते हैं। जब वो बोलते हैं खूब प्रचार करो, रशिया में भी इतना लोगों को कष्ट सहने पड़े, रशियन डिवोटीज जो है पूरे साल केवल बॉयल्ड आलू खाते हैं। किस लिए? वो धन को बचाते हैं। क्यों करेंगे? धन बचा के मायापुर जाएंगे, भारत में जाएंगे, मायापुर फेस्टिवल में भाग लेंगे, फिर वहां से वृंदावन जाएंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, इसमें पूरा वो इसका रस का आस्वादन करते हैं और वापस जाके फिर पूरी तपस्या करते हैं। तो कोई कह सकता है कि ठीक है बाहर जाएंगे प्रभु जी, हम भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, खूब कष्ट सहेंगे, आनंद है। लेकिन जब बाहर के कष्टों को सहने में कोई दिक्कत नहीं है, जब यहां भक्तों के बीच में आते हैं यहां थोड़ा सा भी कष्ट होता है बहुत दिक्कत होती है, ये सहन नहीं होता है ना। यहां रह के संतुष्ट रहना, जैसे मर्जी परिस्थिति हो जाए इसमें संतुष्ट रहे। बाहर प्रभु जी कोई बात नहीं, लिखा पानी पी के संतुष्ट रहेंगे, रह लेंगे प्रभु जी, कुछ खाने पीने को नहीं मिला प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य शिवानंद को भेजा हॉलैंड में, जाओ प्रचार करो। और जब वो हॉलैंड में गए उनको मीट के अलावा कुछ खाने को नहीं मिल रहा, उन्हें प्रभुपाद बोले हम मीट के अलावा कुछ खाने को नहीं मिल रहा, प्रभुपाद बोला मीट खा लो लेकिन प्रचार करो। प्रभुपाद ने उनको परमिशन दे दी मीट खा लो, लेकिन अब शिवानंद जी से मीट खाया नहीं गया। वो महीनों वहां पे रहे बिना मीट खाए, थोड़ा बहुत कहीं फल मिल जाता था पानी पी के वो उन्होंने काम चलाया, लेकिन उन्होंने मीट नहीं खाया। तो ऐसी मुश्किल परिस्थिति में प्रचार किया। तो हम बोले हाँ हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, हम सह लेंगे कर लेंगे। लेकिन वही आकर जब भक्तों के बीच में किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने गलत समझ लिया, वो सहन नहीं होता। बाहर हमारे ऊपर तलवार चला दे कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई थोड़ा सा पिंच उबो दे बहुत दिक्कत है, क्या करें। तो एक बार एक शिकागो में एक माता जी थी, संकीर्तन पुस्तक वितरण, उसने अपने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप कहते हैं हमें विनम्र होना चाहिए और दूसरा आप कहते हैं कि बाहर जाके खूब जोर शोर से प्रचार करना चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए, कैसे समझो? प्रभुपाद ने बोला लैम्ब एट होम एंड लायन ऑन चेज, घर में मेमने की तरह रहो, बाहर शेर की तरह, भूखे बाप की तरह शिकार करो। ठीक है, फिर एक बार सारे भक्त लोग बैठे थे, फिर किसी ने पूछा प्रभुपाद हाउ टू बी हम्बल। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला मैंने उस लड़की को क्या बताया, बताओ जरा मेरे को। उस भक्त ने बोला लैम्ब एट होम लायन ऑन चेज। फिर प्रभुपाद बोला डोंट चेज द डिवोटीज, चेज आउटसाइडर्स। फिर प्रभुपाद कहीं और घूमने गए तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे कृष्ण गोपाल, जो कि बहुत बड़े पुस्तक वितरक थे और उनको बड़ा गर्व होता था, सबसे ज्यादा पुस्तकें मैं बांटता हूं। बोले तो गलत बात है, होना नहीं चाहिए। इससे प्रभुपाद ने पूछा प्रभुपाद ऐसे ऐसे गर्व होता है क्या करूं? प्रभुपाद ने हरिकेश महाराज से बोले उसको बताओ उस लड़की को मैंने क्या बताया था, क्या बताया था? लैम्ब एट होम लायन ऑन चेज। तो इन्हें बोला तो कृष्ण गोपाल जी को समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्या मतलब इसका। तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाए बी अग्रेसिव फॉर रिसीविंग कृष्णास मर्सी, कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए बहुत आक्रामक एग्रेसिव हो। तो अब उसको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, यानी कि भगवान की कृपा को प्रसाद को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत एग्रेसिव होना चाहिए, बहुत उत्साहित, सब कुछ करने को तैयार। लेकिन भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम बाहर जाएं तो शेर की तरह गरजे, जैसे एक भूखा शेर अपने शिकार को नहीं छोड़ता, वैसे बाहर कोई भी अवसर हमें छोड़ना नहीं चाहिए प्रचार के लिए, तो उसको पकड़ लेना चाहिए, जैसे शेर झपट मार के पकड़ता है उसको, जहां मौका मिले प्रचार करें। और जब वापस आए भक्तों के बीच में मेमने की तरह, कोई बात नहीं, कोई कैसा भी कह दे चलो संतुष्ट, कोई बात नहीं। हमारे को जितना हम भक्तों के बीच में मेमने की तरह रहेंगे उतना हमारे प्रचार की शक्ति बढ़ेगी। कोई बोले नहीं जी मैं तो हमेशा ही शेर हूं, भक्तों के बीच में भी शेर और बाहर भी शेर, गर्जना मेरी फितरत है। शेर तो गरजेगा ही, मैं नहीं करेगा, है ना, पूरी दुनिया जानती मैं शेर हूं, है ना। तो भैया तो अगर भक्तों के बीच में कोई गरजेगा तो बाहर जाके मैं भी नहीं निकलेगा उससे, देखा है भक्त लोग, क्योंकि मैं शेर हूं, मैं तो गरजता हूं, वो झुक के किसी के पास जा ही नहीं पाएगा, उसको संकोच होगा, उसका अहंकार इतना बड़ा होगा। लेकिन जो भक्तों के बीच में ऐसे रहता है उसको गरजने की शक्ति मिलती है। ये भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए एग्रेसिव होना है, तरीका अलग अलग है, ये समझने का बात करनी है। इससे हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। एक बार एक इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज आए, मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा महाराज सब कुछ पढ़ते हैं बढ़िया है सब कुछ है, लेकिन भक्तों के बीच में ऐसा होता है और इतने टेंशन इतने हर्डल्स, सारा भक्ति का उत्साह खत्म हो जाता है। महाराज ने मुस्कुराए और बोले, महाराज ने बोला दीज हर्डल्स मेक आवर डिवोशनल सर्विस वेरी स्वीट। वो तो अनुभव से कह रहे थे, वो तो रेलिश करते हैं। आहा, एक और हर्डल आ गई, रेलिश कर रहे हैं, वाह। जैसे कि आप सबने आप मेलों में जाते हैं बचपन में, वो जाइंट व्हील होता है ना, जितनी जोर से ऊपर घुमाता है ऊपर से जब नीचे आता है कैसी हालत होती है, ओ, 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 सब चिल्ला रहे हैं और उनको मानना कुछ नहीं हुआ, फिर ऊपर जाता है और स्पीड बढ़ती है, सब चिल्ला रहे हैं लेकिन उसमें आनंद बढ़ता जा रहा है ना। इसी ढंग से जो सच्चे भक्त होते हैं उनके जीवन में ऐसी मुश्किलें आती हैं उनको लगता है वाह और आनंद आ रहा है, और मौका मिल रहा है भगवान के चरणों को दृढ़ता से पकड़ने की, और मौका मिल रहा है हृदय से रो रो के भगवान को पुकारूंगा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और भक्त ने जुहू में उनको और विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, वो गए महाराज के पास, पूछे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, भक्त लोग भी ऐसा करते हैं क्या, पीछे ये वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या फिलोसफी क्या है सर, क्या आदर्श है क्या करूं। महाराज ने बोला घबराओ मत, डू द नीडफुल, जो कर सकते हो बेस्ट करो, नंबर वन, नंबर टू बी डिटैच्ड, ये नहीं मैंने कर दिया हो क्यों नहीं रहा, और नंबर थ्री डिपेंड ऑन कृष्णा, बस ये तीन चीजें याद रखो, बस ये आध्यात्मिक संस्था में सर्वाइव करने के कुछ फार्मूले हैं। यहां उनके जितना भी हम विचलित होंगे डेविएट होंगे मुश्किल में हो जाएंगे भ्रमित हो जाएंगे क्या हो रहा है, और अपनी ही भक्ति का हम नुकसान कर रहे हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए जब मैं असंतुष्ट होऊंगा बहुत बेचारा बनकर घूमूंगा तो मैं भगवान की कृपा को ज्यादा आकर्षित करूंगा, एक गलत फहमी है कि दुखी जीव भगवान के सामने खड़ा हो जाएगा असंतुष्ट हूं कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ, भगवान पहले थप्पड़ मारेंगे, चल बेवकूफ व्यक्ति इतना सुना इतना पढ़ा और फिर ऐसी बातें कर रहा है, भगवान ने कितने महाराज को डांटा इंद्र के साथ उसका डिस्प्यूट हो गया, तो इतना पढ़ा लिखा क्या फायदा हुआ, बड़े बड़े आचार्यों से टीकाएं सुनी तुमने और जब मौका आया सब भूल गया, इंद्र का कोई दोष नहीं तो है कोई बात नहीं, ऐसा तुम तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तुम्हें क्यों नहीं किया। तो हमें जब हमेशा नहीं कि दुखी होकर पहुंचेंगे तो भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे, नहीं जब हम भगवान के पास जाएं तो बोले सहन करने की शक्ति दो, सहन करने का मतलब उस परिस्थिति में मैं संतुष्ट रह सकूं। जिसमें राधा स्वामी महाराज सहन करने की बहुत अच्छी परिभाषा देते हैं, बोले डीलिंग नेगेटिविटी विद पॉजिटिविटी इज टॉलरेंस, नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मकता से उसको उसका फेस करना ये टॉलरेंस है, ये प्रैक्टिस है, ये थ्योरी नहीं है, थ्योरी को थ्योरी रहने में कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाएंगे प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि स्टेज में ड्रामा करते हैं, ड्रामा करने की प्रैक्टिस करते हैं, खूब प्रैक्टिस की जब स्टेज पे पहुंचता है तो नया एक्टर सारे डायलॉग बोल जाता है पब्लिक को देखकर, तो और जैसे वो डायलॉग बोलते हैं पब्लिक शो मचाना शुरू करते हैं करके, हमारे कोई कॉलेज के स्टेज में कोई आता है तो आप थोड़ा सा कर दे उसकी ऐसी हूटिंग होती थी बेचारा भाग जाता था, मतलब कि ऑडियंस वो मौका देख रही है कि जहां एक्टर थोड़ी सी गलती करे उसकी ऐसी तैसी कर दे। भक्तों के समाज में तो अलग होता है, भक्तों के समाज में भक्त कुछ भी बोलते लोग हरी बोल बोल के उत्साह बढ़ाते रहते हैं, लेकिन अगर कोई एक्टर स्टेज पे है और डायलॉग भूल गया और डायरेक्टर को भी मालूम होता है यार एक नया है नो सिखिया डायलॉग बोल जाएगा, क्या करता है पीछे आके बोलता रहता है, अब बोलो ऐसा बोलो, हे राम मैं तुम्हारे चरणों में पड़ गया हूं, हे राम मैं तुम्हारे चरण। तो जैसे वो पीछे से आवाज आती है वैसे वो बोलता है ना। तो इसी ढंग से जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और जब प्रैक्टिकल परिस्थितियां होती हैं हम सब भूल जाते हैं, तो कोई मित्र चाहिए हमें याद दिलाने के लिए, क्या सुना था क्या पढ़ा था वो दोहरा दे, लेक्चर दोबारा से सुन ले, जो बात दोबारा कानों में पड़ती है हमें वो बात याद आती है। ये प्रैक्टिस कुछ भी करें प्रैक्टिस, तो हम करेंगे तो हम आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे, अन्यथा ये सारा जीवन रोते रोते निकल जाएगा। पैदा हुए फिर रोते हुए, मरेंगे रोते हुए, फिर पुनर्जन्म आएगा फिर रोते हुए, फिर रोते हुए, ये क्या स्वतंत्रता है ना। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहलाएगा। इसलिए उसका सही वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है। अरे रोना है, यहाँ पे हम संतुष्ट नहीं है, ये नॉर्मल स्थिति है, डू समथिंग एक्स्ट्रा। ऐसी परिस्थिति में संतुष्ट हूं ये काम का व्यक्ति है, ये हीरा है, कीचड़ में हीरा है। मैं सब कुछ असंतुष्ट, मैं भी असंतुष्ट, तो इसका क्या लाभ होगा। तो इसलिए चाणक्य पंडित भी कहते हैं असली धनवान व्यक्ति वो है जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, जो हर परिस्थिति में संतुष्ट है। और वास्तव में अगर हम प्रचार करना चाहते हैं तो नारद मुनि ने पचेतस को ये बोला, दया सर्वभूतेषु संतुष्टा ये न केनवा सर्व इंद्रियों को शांति अचत तुष्यति आशु जनार्दन। भगवान को संतुष्ट करेंगे यानी हम भी संतुष्ट रहेंगे इन तीन परिस्थितियों में। सब पे दया करनी, प्रचार पे निकले, प्रचार करें। प्रचार करने के लिए कोई कौन व्यक्ति प्रचार कर सकता है, संतुष्टा ये न केनवा, जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे। हर परिस्थिति में कौन संतुष्ट रह सकता है, सर्व इंद्रियों की शांति अच्छा, जिसने अपनी इंद्रियों को नियमित किया हुआ है वही संतुष्ट रह सकता है और वही प्रचार कर सकता है। तो इसलिए ये आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसका हम अभ्यास करेंगे देन विल बी अ विक्टर ओवर लॉज ऑफ नेचर, अदरवाइज विल बी विक्टिम्स ऑफ लॉज ऑफ नेचर। हमारे पास च्वाइस है कि हमने विक्टर बनना है कि विक्टिम बनना है। प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिख रहे हैं कि वह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित नहीं होता। अगर अपने इसी रूटीन लाइफ में चलते रहे तो हम तो प्रकृति के नियमों के द्वारा हमेशा ही प्रताड़ित किए जाएंगे। लेकिन प्रकृति के नियमों से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है आज इस इंडिपेंडेंस डे के दिन, है ना, तो हम क्या करें, हम इसके ऊपर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं ये प्रैक्टिस करके। प्रभुपाद जी ने एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया कि हम इस परिस्थिति को प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने टॉलरेंस के ऊपर इतना डिटेल में बताया। प्रभु जी ये जो एक बार पहले मैंने वंशीवर्धन प्रभु से भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, वंशीवर्धन प्रभु से सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, तो फिर से आपसे भी पूछना चाहूंगा इस पर कि डिस्टर्ब होना कई बार हमारे सिर हाथों में नहीं होता, और ऑल दो हम टॉलरेट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बावजूद भी येट वी गेट डिस्टर्ब, व्हाट टू डू इन दो सिचुएशन, नॉट हमारे टॉलरेंस लिमिट के बाहर में चला गया, थियोरेटिकली डिस्टर्ब हम करने का प्रयास किया, तब हमें क्या करना चाहिए।
या डिस्टर्ब तो हम होते ही, छोटी बात पर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या करना चाहिए, टॉयलेट हो ही नहीं रहा, बस अंदर खून उबल रहा है, कुछ भी करना है करने, कैसे कर दिया उसने, कैसे हो गया, सब होता ही है। तो तरीके हैं कई, कई तरीके अपने अपना सकते हैं। सबसे अच्छा है कि हमारा एक भक्त होना चाहिए जिसके पास जाके मेरे शेयर कर सके। कई बार वो भक्त नहीं मिल पाते या कई बार उन्हीं भक्त से गुस्सा आ रहा होता है जो जिसमें दवा देनी वही दर्द दे रहा है, किसके पास जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, क्या करूं कहां जाऊं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन में, नाउ यू हैव कृष्ण बलराम, सो वाई टू वरी, कृष्ण बलराम है हमारे पास, कृष्ण बलराम जी के पास जाए, खड़े रहे वहां पे, हृदय बोल दे सब कुछ जो है, ये हम प्रैक्टिस करें। और दूसरी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इधर उधर ना जाए, कहेंगे मिल गया बैठ यार चल सुना करके सुना दिए, उससे दूसरे का मुंह एक दो बातें और बोल दी और अंदर मसाला डाल दिया उसके, तो ये होता है सब, और उसका इतनी गंदगी उसके अंदर भर जाती है, वो भी बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस करने की, ये नहीं करना कहीं भी चला गया वहां रोना शुरू कर दिया, नहीं, ये ये तपस्या है हमारी, यही तो तपस्या। हमने एक टांग पे खड़े नहीं होना, घास फूस नहीं खाने, हवा नहीं पीनी, हमने तो सब कुछ फिश खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तपस्या क्या है? सहन करना। और ये भक्तों की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभुपाद के एक शिष्य आए थे, वो बोल रहे कि सूक्ष्म शरीर हमें दिखाई तो देता नहीं है, सूक्ष्म जी का सबसे स्थूल भाग है मन। मन होता है हमें नजर आता है, मूड़ी वेब होते हैं, क्या जो मर्जी करो, है ना। बुद्धि भी दिखी आती, कुछ समझदारी का काम करे, अहंकार नजर नहीं आता। बोले अहंकार में पता नहीं चलता हमारे अंदर झूठा अहंकार है। नहीं, जैसे ही भक्तों के संग में आते हैं तो हमें अपना अहंकार भी नजर आना शुरू होता है ना? तो भक्तों में आके हम एक्सपोज होते हैं, तो भक्तों में कहता है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होने वाली, हेवन्स आई एम गोइंग टू फॉल, ऐसा नहीं कि मैं ध्वस्त हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। कि ये नहीं होगा कि मैं पागल, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी। हम ऐसे सारे इतना स्टेज डाल देते हैं उस सिचुएशन में, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्णा इज प्रोटेक्टर, कृष्णा मेरे वेलविशर है, कृष्णा लव्स मी, बस। तो ये फिलॉसफी को स्मरण कराना है, बस एक व्यक्ति चाहिए जो हमें डायलॉग याद दिला दे पीछे से, उसको पालन करना बस। तो प्रैक्टिस करें, अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि प्रभु जी और कोई तरीका है, कोई और कोई है तरीका, ये तो काम नहीं कर रहा, तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। दूसरा एक और अभी प्रभुपाद का बड़बड़ पड़ा, उसमें मुझे एक हिंट मिला गजेंद्र के उपलक्ष्य में। प्रभुपाद यहां कह रहे हैं किसी भी कितने भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, अ डिवोटी शुड कीप ऑन फॉलोइंग इज रेगुलर प्रोग्राम। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। कितने ही दुर्भाग्यशाली परिस्थितियां क्यों ना हो जाए, एक भक्त अपना रेगुलर प्रोग्राम नियमित रूप से फॉलो करता है, उससे क्या होता है कि उस परिस्थिति से बाहर निकल आएगा। जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, सुबह की साधना है, 16 माला का जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, अध्ययन करना है, श्रवण, वो करता रहे, मन नहीं लगा जबरदस्ती मन को लगा ये करता रहे, तो वो उस परिस्थिति से बाहर हो जाएगा। जहां हम दुनिया दुर्भाग्यशाली परिस्थितियों में आके उन्हीं परिस्थितियों के बारे सोचते रहते हैं और अपने प्रोग्राम से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वहां फिर हम दलदल में फंस जाते हैं। प्रभु जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि संतुष्ट रहना और साथ में तरक्की करना दोनों साथ साथ कैसे चल सकता है। बहुत ही जगत में यही कंसेप्ट है, हम तरक्की क्यों करते हैं, संतुष्ट नहीं है वर्तमान स्थिति से, इसको बदलना है। लेकिन अध्यात्मिक जगत बिल्कुल उल्टा है ना। यहां पे हम अपने भजन से कभी संतुष्ट नहीं होंगे, अपनी सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होंगे कि 16 माला कर ली अब संतुष्ट हो जाए। सेवाओं को बढ़ाना है, भजन को बढ़ाना है, माला को बढ़ाना है, लेकिन भौतिक परिस्थितियां जितनी हैं उसमें संतुष्ट है। संतुष्ट है ये न केन, इनको नहीं करना। और समझ लीजिए हम एक ऐसी मैनेजमेंट की पोजीशन में है जहां की हमें भौतिक परिस्थितियों को भी सुधारने की हमारी जिम्मेवारी है, तो उसमें जो हिजोले गोपाल कृष्ण महाराज ने फार्मूला दिया, डू योर बेस्ट, बी डिटैच एंड डिपेंड ऑन कृष्ण, ठीक है ना।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सेटिस्फाई होने के लिए वी नीड टू सरेंडर आर कर्मा टू कृष्णा, कृष्ण को अर्पित करके करना होता है। लाइक जैसे अगर हम पढ़ाई करें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, काम जॉब करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, लेकिन ये कैसे समझ आएगा कि हम जो काम करें वो भगवान को अर्पित करें कि हमारी सिर्फ फैंटेसी है,
हमारी
ये फैंटेसी है, इमेजिनेशन में चल रहा है।
हाँ, सही बात है, कुछ भी करें नियम भी तोड़ रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो अच्छा प्रश्न है, तो इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है ना। अपनी मनोकल्पना से कुछ नहीं कर सकते कि मैं जाऊंगा विदेश में प्रचार करूंगा भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए, ऐसे चले जाए हैं। तो मार्गदर्शन, नो सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव बिंद की, ग्रंथ का श्रीमद् भागवतम की, जिताय गौर प्रेमानंदे।